नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के पूर्व कमांडर अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अकरम लश्कर का पूर्व कमांडर था। वो 2018 से 2020 तक लश्कर में भर्ती का काम देखता था। अकरम गाजी की गुरुवार को पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अकरम लश्कर के टॉप कमांडर्स में रहा है। वो लंबे वक्त से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह से आतंकियों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले मुफ्ती कैसर फारूख खालिस्तानी, आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़, एजाज अहमद अहंगर, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक अकरम लश्कर ए तैयबा का एक जाना माना नाम है। वो लश्कर के केंद्रीय भर्ती सेल का एक प्रमुख सदस्य था। वो भारत के खिलाफ नफरत भरे भाषणों के लिए जाना जाता था। वो लंबे समय से चरमपंथी गतिविधियों में शामिल था। भारत में कोई अपराध कर ब्रिटेन में जाकर रहना अब आसान नहीं होगा। ब्रिटेन की सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है जिसे भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन में इमिग्रेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार कई नए नियम और फैसले ले रही है। सरकार का मकसद बढ़ती अप्रवासियों की संख्या को रोकना है। ब्रिटेन की सरकार अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने में कई कानूनी अड़चनों का सामना भी करती है। ऐसे में सरकार के इस कदम से भारत को सुरक्षित देशों की श्रेणी में शामिल करने से अप्रवासियों को वापस भेजने का रास्ता आसान होगा। भारत को ब्रिटेन के इस कदम से काफी फायदा होने की उम्मीद है। अगर ब्रिटेन भारत को सुरक्षित देशों की श्रेणी में शामिल करने से भारत ब्रिटेन की अवैध यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। बता दें कि बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे गए मसौदा कानून में भारत और जॉर्जिया को सूची में जोड़े जाने वाले देशों के रूप में शामिल किया गया है। विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी, यानी विज्ञान का चमत्कार इंसान के लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी। इसका एक उदाहरण दक्षिण कोरिया में देखने को मिला है। यहाँ एक रोबोट ने कृषि उपज वितरण केंद्र में शख्स को कुचल कर मार डाला। दरअसल रोबोट सब्जियों के बॉक्स को शिफ्ट कर रहा था। इसी बीच उसका सेंसर खराब हो गया। इतने में वो 40 साल के काम करने वाले शख्स को मिर्ची का बॉक्स समझ बैठा। रोबोट के हाथ ने उस शख्स को जकड़ लिया। इसके बाद उसने ऊपरी शरीर को एक कन्वेयर बेल्ट पर धकेल दिया। इससे उसे काफी चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। इस घटना की पुष्टि योनहापा पुलिस ने की है। इस साल दक्षिण कोरिया में इस तरह की ये दूसरी घटना है। ये घटना हमें ये बताती है कि जिन जगहों पर रोबोट्स का इस्तेमाल होता है वहां पर सुरक्षा को लेकर कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग को लेकर न्यूयॉर्क स्थित द न्यूयॉर्क टाइम्स के कार्यालय की लॉबी में फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया और इसराइल हमास युद्ध को कवर करते समय निष्पक्ष खबरें नहीं दिखाए जाने का आरोप लगाया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मीडिया संस्थान के मैनहट्टन स्थित कार्यालय में एकत्रित हुए। इनमें से कई लोग इमारत के प्रांगण में आ गए और एक घंटे से अधिक समय तक धरना दिया। ये प्रदर्शन मीडिया कर्मियों के राइटर्स ब्लॉक नामक एक समूह के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में मारे गए हजारों फलस्तीनियों का जिक्र किया, जिनमें कम से कम 36 पत्रकार शामिल हैं। उन्होंने एक छद्म समाचार पत्र द न्यूयॉर्क वॉर क्राइम्स के संस्करण बांटे, जिसमें मीडिया पर नरसंहार को वैध बनाने में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है और टाइम्स के संपादकीय बोर्ड से संघर्ष विराम का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने की मांग की गई है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बृहस्पतिवार को किए गए इस प्रदर्शन के दौरान किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सौसा ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो देश की संसद को भंग कर समय पूर्व चुनाव कराने का ऐलान कर रहे हैं। पुर्तगाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके दो दिन बाद राष्ट्रपति सौसा ने संसद को भंग करने की घोषणा की। सौसा ने कहा कि चुनाव 10 मार्च को होंगे। उन्होंने देश की काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ बैठक के बाद टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान अपने फैसले को सार्वजनिक किया। काउंसिल ऑफ स्टेट पूर्व राजनेताओं और दिग्गज हस्तियों की एक परामर्श संस्था है। सौसा ने बुधवार को संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ बैठक की। समाजवादी नेता कोस्टा 2015 से पुर्तगाल का नेतृत्व कर रहे हैं और पिछले साल उन्होंने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। भ्रष्टाचार मामले की जांच के हिस्से के रूप में पुलिस ने पुर्तगाल में व्यापक स्तर पर छापेमारी की थी, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।